मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 15 मार्च 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, कल मैं आपसे भारतीय इतिहास के मूल चरित्र के बारे में कुछ बातें कर रहा था और कल का जो मेरा लेक्चर था वह सामंतवाद पर आकर खत्म हुआ था और कल मैंने आपसे यह वायदा किया था कि नेक्स्ट डे मैं इसी इश्यू पर बात करूंगा। तो अब कल के ही विषय को यहां मैं आगे आज के मुख्य विषय के रूप में बढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैंने कहा था सामंतवाद, जिसे हम इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म जो बेसिकली एक रेवेन्यू सिस्टम के तहत आया था और बाद में जिसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी मान लिया गया, आगे चल करके वह एक प्रकार के सांस्कृतिक चरित्र को व्यक्त करने वाला बन गया। सांस्कृतिक चरित्र को व्यक्त करने वाला कहने से मेरा क्या अर्थ है, आप इसे समझ लीजिए। अब जैसे सामंत हैं, तो अब आप देखिए कि सामंत जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो राजा के प्रतिनिधि हैं, उनका काम क्या है? केवल टैक्स कलेक्ट करना, और तो उनका कुछ काम नहीं है। तो वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए खुद तो जाएंगे नहीं, कुछ उन्होंने कारिंदे रख लिए, वो अपना टैक्स कलेक्ट करके ले आते थे और उस समय टैक्स काफी कुछ होता भी था। और होता यह था कि उस समय तो भूमि ही सबसे बड़ी संपत्ति थी, तो इन सामंतों के पास भूमि भी बहुत ज्यादा होती थी, ये खुद भी अपने पास भूमि रख लेते थे और उस भूमि पर खेती बाड़ी कराते रहते थे। जो मजदूर होते थे वो खेती बाड़ी करते रहते थे, चाहे वो बंधुआ मजदूर हो। हमारे यहां दास प्रथा तो नहीं रही, लेकिन बंधुआ मजदूर की प्रथा तो चलती रही। तो इस तरीके से इनको टैक्स कलेक्शन का भी जो कमीशन मिल रहा है उससे कमाई हो रही है, और दूसरी जो जमीन इनके पास इफरात है उससे भी उत्पादन हो रहा है, कमाई हो रही है। इसलिए आप देखिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद बाकायदे फिर लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, क्योंकि उस समय जो जमींदार लोग हुआ करते थे उनको जमींदार कहा जाता था। हमारे यहां सामंत तो नहीं कहा गया सीधे सीधे, ये जो जमींदार लोग हुआ करते थे इनके पास खूब सारी जमीनें थी, खूब सारी जमीनें थी, और हमने एक सोशलिस्टिक पैटर्न का वायदा किया संविधान में, तो लैंड सेलिंग एक्ट लेकर के आए कि नहीं, इतने से अधिक भूमि एक व्यक्ति नहीं रख सकता, है ना। वो भूमि सुधार के तहत आप जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में आप पढ़ते भी हैं, जो बकायदे आपके सिलेबस में दिया हुआ है भूमि सुधार कानून। तो दोस्तों इनके पास बहुत जमीन होने लगी, तो इनके पास दुनिया भर की इफरात कमाई होने लगी। अब सवाल यह है कि कमाई तो खूब है लेकिन करना कुछ नहीं पड़ रहा है, लोग कर रहे हैं इनके बिहाफ पर। तो फ्यूडल जो कल्चर आया उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व ये बना कि हमारे यहां फिर जो श्रम है, जो मेहनत है, जो लेबर है, उसको हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। क्योंकि जो सामंत है, देखिए जो संस्कृति जो प्रिवेल करती है वो अपर क्लास के लोगों की संस्कृति प्रिवेल करती है, जो बड़े लोग हैं, जो ऊंचे लोग हैं, हम उन्हीं की संस्कृति का अनुकरण करना चाहते हैं। तो जो सामंत हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, देख रहे हैं कि ये तो काम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो जो काम नहीं करने वाले हैं उनको बड़ा माना गया और काम करने वालों को हेय दृष्टि से देखा गया, जो बहुत ही बुरी बात हुई, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सामंत क्या करें, खाली बैठे हुए हैं, तो इनके जीवन में विलासिता के तत्व प्रवेश करते चले गए। विलासिता बहुत जबरदस्त रूप से आने लगी, कुछ नहीं, मौज मस्ती कर रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं, यही सब करने लगे। दरबार लगा हुआ है, वहां गाना चल रहा है, नाच हो रही है, बस इस तरह से। तो सामंतवाद का जो दूसरा चरित्र हमारे सामने आया वो आया विलासिता का, विलासिता। अब आप देखिए कि ये जो सामंत चूंकि विलासिता में मग्न रहने लगे, इसके परिणाम आगे चल करके हुए, तो इन्होंने एक काम और किया कि खासकर इस युग ने या इस प्रवृत्ति ने महिलाओं की स्थिति को बहुत खराब कर दिया, जो विलासिता से जुड़ी हुई बात है। मतलब विलासिता इतनी ज्यादा प्रिवेल कर गई कि नारी वर्ग को एक प्रकार से विलासिता की वस्तु समझा जाने लगा। और इस सामंतवादी पीरियड में आप देखिए कि नारी की जो स्थिति थी समाज में वो लगातार गिरती चली जाती है, क्योंकि वो विलासिता की वस्तु बन गई। तो ये सामंतवाद का तीसरा सबसे खतरनाक, कह लीजिए सबसे निगेटिव तत्व रहा। कुछ पॉजिटिव तत्व भी रहे, जैसे मैंने कहा कि अब नाच गाना और गीत संगीत हो रहा है, तो इसका परिणाम यह हुआ कि सामंतवादी समाज ने देखिए बहुत से नृत्य कलाओं को जन्म दिया, कथक वगैरह नृत्य वहीं से निकले हैं। जो आपके शास्त्रीय गायन की जो परंपरा है वो सामंतवाद की देन है, क्योंकि आप उनको रात बितानी है, समय काटना है, तो फटाफट गाने से तो समय कटेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं लंबे गाने गाओ, तो गा रहे हैं। तो ये सब सामंतवादी की देन। तो कल तो कला साहित्य संस्कृति चित्रकला इन सब के क्षेत्र में म्यूजिक सामंतवाद की एक देन भी रही है। और फिर उन्होंने नो डाउट किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो तैयार किया ही था। तो चलिए सामंतवाद के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी, क्योंकि अक्सर इसका उल्लेख लेखों में मिल जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है कि ये सामंतवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यहां सामंतवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, क्या तुम सामंतवादी मूल्यों की बात कर रहे हो, तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि भाई ये कह क्या रहा है। और मेरी समझ से अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहूं कि क्या यार सामंतवादी मानसिकता में तुम जी रहे हो, तो आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या अर्थ है। तो दोस्तों अब आप देखें कि एक चीज हमारी राजनीतिक व्यवस्था की ये रही कि पूरे के पूरे इतिहास के दौर में हम देखते हैं कि एक केंद्रीय सत्ता होती थी, एक सेंट्रल पावर होती थी, जिसे आज केंद्र सरकार कह लीजिए, है ना, जो सम्राट होता था वो केंद्र सरकार होती थी और उसके हाथ में सारी शक्तियां होती थी और सामंतों के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो शासन चलाता है। इतिहास के पूरे दौर में हम पाते हैं कि जब जब केंद्र की सत्ता कमजोर हुई, वैसे ही जो प्रांतीय सत्ताएं हैं जहां सामंत होते थे वो प्रबल होने लगे। वो जब देखते थे कि नहीं राजा तो अब कमजोर पड़ रहा है, ये उतना शक्तिशाली नहीं है, तो सोचते थे कि हम आजाद हो जाएं, हम अपनी मनमानी करने लगे, तो बकायदे अपनी मनमानी करने लगते थे। तो ऐसी स्थिति में होता यह था कि वहां फिर ये मनमानी करने लगते थे, विद्रोह कर लेते थे, या जो भी कह लीजिए, राजा उनको कंट्रोल, महाराजा जो सम्राट है उनको कंट्रोल करने की स्थिति में होता नहीं था, तो फिर ये अपने छोटे 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 राज्य बना लेते थे और साम्राज्य का अंत हो जाता था। यानी कि केंद्र में जैसे ही कमजोर सम्राट होता था, वैसे ही प्रांतीय सत्ताएं प्रबल हो जाती थी, मजबूत हो जाती थी और साम्राज्य बिखर जाता था और छोटे छोटे राज्य जन्म ले लेते थे। ये पूरे दौर में आपको दिखाई देगा, पूरे दौर में, राइट। कुछ छोटे छोटे हिस्से आए हैं जहां हम इस तरह के बड़े साम्राज्यवादी व्यवस्था को पाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मौर्य साम्राज्य का काल था, इसके बाद गुप्त साम्राज्य का काल था, कुछ सीमा तक अलाउद्दीन खिलजी का भी साम्राज्य अपेक्षाकृत बड़ा साम्राज्य था। इसके बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया उनमें थे अकबर और औरंगजेब, उनके साम्राज्य बहुत बहुत और बहुत बड़े साम्राज्य थे। दोस्तों अब मैं अगली विशेषता पर आता हूं कि पूरी क्या स्थितियां हम अपने इतिहास में देखते हैं। एक बहुत बड़ी बात भारतीय इतिहास की रही है, जो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी बात रही है, और खासकर जब हम उसे यूरोप के इतिहास से तुलना करके देखते हैं, तो राजा हुए हमारे यहां, राजा शासक हुए और शासकों के अपने निजी धर्म भी हुए। अब जैसे सम्राट अशोक, सम्राट अशोक बकायदे बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था, बौद्ध धर्म में वो दीक्षित हुए थे। जब हम हर्षवर्धन को देखते हैं तो वो जैन धर्म में दीक्षित हुए थे। इसके पहले जब हम और गुप्त सम्राट में, गुप्त काल में जाते हैं, तो कोई शैव को मानने वाले हैं, कोई विष्णु को मानने वाले, अलग अलग राजा अलग अलग धर्मों को मान रहे हैं अलग अलग काल में, उनके निजी धर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये राजा धर्मांध नहीं हुए, धर्मांध आपको नहीं दिखाई देंगे। इक्के दुक्के देखिए अपवाद के रूप में अलग है, हम अपवादों को तो लेकर के नहीं पूरी का पूरे इतिहास का विश्लेषण कर सकते। अदरवाइज हमारे जो राजा हैं वो एक तरीके से शुरू से धर्म निरपेक्ष की परंपरा को लेकर चले, आज के संदर्भ में नहीं, मतलब उनका अपना धर्म है, अपने धर्म को सम्मान करते हैं, मानते हैं, ओपनली मानते हैं, लेकिन किसी पर यह दबाव नहीं है कि आप भी इसी धर्म को मानेंगे। और दूसरी बात ये कि पूरे के पूरे हमारे भारतीय इतिहास में राज्य और धर्म में सीधे टकराव की स्थिति आपको दिखाई नहीं देगी। यूरोप में बहुत जबरदस्त रूप से टकराव की स्थिति दिखाई देती है, मतलब यूरोप का तो जो मध्यकाल है, उस मध्यकाल में आप पाएंगे खासकर रेनेसा पीरियड से पहले, तो चर्च जो है वो तो राजाओं को आदेश देता था और किसी राजा की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो चर्च के आदेश की अवहेलना कर सके। यहां तक कि चर्च बकायदे राजाओं को सजाएं भी देता था और राजाओं को उन सजाओं का पालन करना पड़ता था। इनफैक्ट सच पूछिए तो उस काल में पूरे के पूरे यूरोप के देशों में राजा चाहे जो भी हो, लेकिन जो सच्चा राजा था, जो सही मायने में राजा था, वो वेटिकन सिटी का पोप हुआ करता था। भारत में ये नहीं रहा। आप इस्लाम तक में देखिए कि जब हमारा दिल्ली सल्तनत आता है तो दिल्ली सल्तनत में भी हम पाते हैं कि बकायदे जो यहां सुल्तान बना है उसको खुतबा पढ़वाना पड़ता था, यानी कि जो उनके हेड हैं, जो रिलीजन हेड हैं, उनके नाम पर खुतबा पढ़ा जाता था, यानी कि उनसे मान्यता लेनी पड़ती थी। भारत में ये कहीं दिखाई नहीं देती है। तो यहां आप हमारी जो धर्मनिरपेक्ष की परंपरा है वर्तमान संविधान में, आप उसके जड़ देख सकते हैं कि ये शुरू से हमारे यहां रहा है। राजा का निजी धर्म है, दूसरे धर्म से भी द्वेष नहीं है, धर्म और राज्य में किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। इसीलिए भारत में आपको कभी धर्म युद्ध की घटना पढ़ने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं कि हमारे इतिहास में देखिए, शुरू से राजा को प्रजापालक कहा गया। यहां तक कि आप अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र उठाकर देखेंगे, जो खासकर मौर्य साम्राज्य के लिए उन्होंने लिखा था, मौर्य साम्राज्य के काल में लिखा था, तो प्रजापालक ही कहा गया है, यानी कि आप जो जनता है इसको अपने पुत्र के समान मानेंगे और पिता के समान उनके साथ व्यवहार करेंगे। इसका मतलब है कि आप जनता के कल्याण का ध्यान रखेंगे। मतलब जो भारतीय परंपरा रही है राज्यों के संदर्भ में, वो एक कल्याणकारी राज्य की रही है, वेलफेयर स्टेट की रही है। इसीलिए आप देखते हैं कि सम्राट अशोक को जो हम महान मानते हैं, नो डाउट कि उसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने युद्ध को तिलांजलि दे दी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने कल्याणकारी बहुत सारे काम किए लोगों के कल्याण के लिए, और इस उनके कल्याणकारी कामों ने उन्हें महानता के पद तक पहुंचा दिया। तो शुरू से जो हमारी राजनीतिक प्रणाली रही है वो बेसिकली कल्याणकारी रही है। लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई पूरे के पूरे भारतीय इतिहास में, अपवाद स्वरूप आप कुछ को छोड़ सकते हैं, अदरवाइज एक गलती हमारे सम्राटों से होती रही, राजाओं से होती रही। मित्रों, वो गलती ये कि देखिए, हमारे पास जो आर्थिक आधार था, राज्य के पास जो सबसे बड़ा आर्थिक आधार था वो एग्रीकल्चर था। नो डाउट कि कृषि, आपको उद्योग क्या, हस्त उद्योग, दस्तकारी उद्योग, इन सब से आय होती थी, और साथ ही साथ विदेशों से व्यापार होता था, उससे टैक्स मिलता था राज्य को, वो तो होता ही था। लेकिन जो टैक्स का सबसे बड़ा आधार था वो तो कृषि व्यवस्था थी। दुर्भाग्य से कृषि व्यवस्था की ओर ध्यान देने वाले बहुत ही गिने चुने शासक रहे हैं, जिससे उनको सबसे ज्यादा आय मिल रही है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए कैसे इन आय के साधनों को विकसित करें, यानी कि जो एग्रीकल्चर है इस एग्रीकल्चर के लिए हम काम करें, नहरें बनवाएं, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएं। इस तरह का विचार बहुत कम सम्राटों में देखने को मिलता है, बहुत कम। और इसीलिए क्या हुआ कि हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो बहुत उन्नत नहीं हो पाई, और हम कृषि के मामले में यूं कह लीजिए कि लगातार पिछड़ते चले गए। केवल यही नहीं हुआ, मतलब अर्थव्यवस्था की हमने एक तरह से कह लीजिए कि लगातार अवहेलना ही की है। उद्योगों पर भी हमारा कोई विशेष ध्यान नहीं रहा, हमने उद्योगों पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया कि भाई चलो ये दस्तकारी उद्योग है तो इसके लिए कुछ काम किया जाए, ये फलाना उद्योग है तो इसके लिए कुछ काम किया जाए। जबकि प्राचीन काल में तो आप देखिए कि भारत के बहुत सारे ऐसे दस्तकारी उद्योग थे जो विश्व प्रसिद्ध थे, लेकिन हम पाते हैं कि उसके लिए जो काम किया है उन उद्योगों से जुड़े हुए व्यापारियों ने किया है या उन उद्योगों से जुड़े हुए दस्तकारों ने किया है ज्यादातर, कि उन्होंने अपने संघ बनाए, संघ बनाने के बाद उन्होंने अपने नियम कानून कायदे बनाए और उसके आधार पर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। लेकिन राज्यों ने कुछ बहुत ठोस कदम उठाए हों जिनके लिए उनका नाम लिया जा सके, उनकी प्रशंसा की जा सके, मित्रों वह चीज हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये हमारे यहां एक बहुत बड़ी कमी रही कि कृषि व्यवस्था की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, जबकि जो अंग्रेज आए उनका सारा जोर केवल अर्थव्यवस्था के प्रति ही था। आप देखिए कि वो तो अर्थ हमारे यहां व्यापार करने ही आए थे और हमें उन चीजों की जानकारी नहीं थी, और यूरोप जहां इतना ज्यादा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, नींव रखी जा चुकी थी, हम औद्योगिक क्रांति से बिल्कुल अपरिचित थे। और दुर्भाग्य की बात यह है, आप देखिए कि आश्चर्य की बात कह लीजिए, दुर्भाग्य से ज्यादा अच्छा शब्द होगा, कि बकायदे यूरोप के साथ हमारा व्यापार हो रहा है, हमारे मसाले यूरोप के देशों में जा रहे हैं, लेकिन यूरोप में हो क्या रहा है इसके बारे में हम अनजान है। इसका मतलब यह है कि हमारे शासकों ने अपने आप को अपने क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित रखा। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरी जगह क्या क्या हो रहा है, जबकि दुनिया के साथ उनके संपर्क थे, संबंध थे। हमारे जो साउथ के शासक है, जो चोल शासक, जिनकी गणना महान शासकों में होती है, आप देखिए चोल साम्राज्य इतना समृद्ध साम्राज्य रहा है, उस वंश रहा है, उसका कारण यह था कि उसका साउथ ईस्ट एशिया इन सब के साथ बहुत जबरदस्त रूप से व्यापार होता था, जल परिवहन के माध्यम से। समुद्र में आप देखेंगे, साउथ में चले जाए तो समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था और उससे बहुत ज्यादा समृद्धि आती थी। हम दूसरे देशों में जा रहे हैं, हम दूसरे देशों के लोगों से मिल रहे हैं, वो हमारे यहां आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ अपने में ही इस तरह से खोए रहे, या यूं कह लीजिए कि अपनी महानता के गर्व में या गलतफहमियों में इस तरह डूबे रहे कि सच्चाई से हमने आंखें मोड़ ली। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा आप देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने आकर के भारत पर अधिकार किया। इतिहासकार जो इस्लाम धर्म के अनुयायी आए, उनको भी बाहर का मानते हुए कहते हैं कि इन्होंने भी अधिकार किया। और फिर लगातार हमारे ऊपर इस तरीके से बाहर से आए हुए लोग शासन करते चले गए। तो मित्रों, जितना भी मेरे पास वक्त था, उस वक्त को ध्यान में रखते हुए मैंने जो भारतीय इतिहास का जो मूल चरित्र हो सकता है, उनके कुछ तत्व आपके सामने रखे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप इन्हें याद रखेंगे, बीच बीच में सुनते रहेंगे, तो आप पाएंगे कि जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में आप गहराई तक उतरने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। जो किताबों में नहीं लिखा गया है उन्हें भी आप पढ़ पा रहे हैं, बशर्ते कि इन तथ्यों को आप अच्छे से आत्मसात कर लें, अपने दिमाग में बसा लें। और याद रखें कि ये जो कुछ भी मैंने बताया, ये रटने की चीज नहीं है, ये अवधारणा की चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। आपको अवधारणा के स्तर पर इसे स्वीकार करना होगा, आत्मसात करना होगा, और इसी बैकग्राउंड में फिर इतिहास को पढ़ना होगा। तो मित्रों, अब मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, आज शुक्रवार है, कल और परसों दो दिनों तक आपसे बात नहीं हो सकेगी, सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब हम लोग फिर और बातें करेंगे। ये बीच के दो दिन आपके बड़े खुशनुमा तरीके से व्यतीत हों, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और मुझे भी इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।